अध्याय 48। तीन पूर्वी प्रदेश। महाद्वीप के एक कस्बे में एक छोटा सा निजी घर था जिसे धनुष ने खरीदा था। जब वह सिल्वर कार्ड असैसिन बना था तब उसने बहुत सारा पैसा कमाया था, इसलिए उसने इन तीनों काउंटियों में 10 से अधिक घर खरीदे ताकि जब भी जरूरत पड़े वहां रह सके। दमिनी, अंदर लाने की जरूरत नहीं है, इसे सीधे इस पत्थर की मेज पर रख दो, आज मैं आंगन में ही खाना खाऊंगा, धनुष मुस्कुराते हुए बोला। अब धनुष ने अपना असली चेहरा फिर से अपना लिया था। वहीं वायु कहीं उड़ गया था, शायद भोजन ढूंढने। एक औरत जो मोटी सफेद रुईदार जैकेट पहने थी हंसते हुए बोली, धनुष तो फिर तुम यहीं खाना खा लो, मैं अब लौटती हूं। यह दामिनी पास के होटल की थी। जब धनुष यहां अपने शरीर को आराम देने आता था तो वह अक्सर होटल के लोगों से कहता था कि खाना सीधे उसके घर पहुंचा दिया जाए। वैसे भी उसे बहुत आजादी थी। उसके पिताजी अविनाश, बड़ा भाई और दूसरा भाई सेना की तैयारियों में व्यस्त थे, जबकि धनुष उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। अच्छा हुआ कि मेरे पास मीटियोरिक टियर की रहस्यमय शुद्ध धाराएं हैं, नहीं तो पता नहीं मेरा बायां हाथ कब ठीक होता, धनुष ने अपने मन में कहा और अपने बाएं हाथ की ओर देखा। उसके बाएं हाथ में रविंदर द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा की दो तेज रेखाएं घुस गई थीं। यह चोट बहुत गहरी थी, लेकिन मीटियोरिक टियर से बहने वाली शुद्ध धाराओं के कारण उसका घाव बहुत तेजी से भर गया। केवल 3 दिनों में उसके हाथ पर सिर्फ हल्के निशान रह गए थे, पुराने जैसे 2 गहरे छेद नहीं। थोड़ी देर बाद वायु वापस आ गया। वायु, तुझे लौटने की याद भी आई? कल गया था और आज आ रहा है, कहीं कोई खूबसूरत मादा चील मिल गई क्या? तुझे मादा चील दिख जाए तो मुझे भूल जाता है, सच में तू बड़ा शरारती है, धनुष हंसते हुए उसकी चोंच पर चॉपस्टिक से हल्का प्रहार करता है। यह सुनते ही वायु ने सिर ऊपर उठाया और बहुत तिरस्कार भरी नजर से देखा। स्पष्ट था कि वह आम मादा चीलों को बिल्कुल तुच्छ समझता था। अब भी इतना घमंडी है? चलो, पिछले 3 दिन से मैं आराम कर रहा था, अब मुझे उस ट्रांस हेवन डायग्राम को देखना चाहिए। धनुष की आंखों में चमक आ गई, वह तुरंत घर के अंदर गया। वायु ने जिज्ञासु होकर अपनी आंखें झपकाई और उसके पीछे अंदर चला गया। हा, धनुष ने हाथ बढ़ाकर पंजा बनाया और जमीन पर रखे एक बड़े पत्थर के ब्लॉक को पकड़ लिया। हल्के से झटके में उसने उसे किनारे फेंक दिया। उस पत्थर के नीचे 2 लोहे के बक्से थे, उसने उनमें से एक निकाल लिया। ट्रांस हेवन डायग्राम्स, इनके बारे में तो सुना है पर देखा कभी नहीं, धनुष हंसते हुए बोला। उसने बक्से को कई बार दबाया और क्लिक की आवाज के साथ उस पर एक चाबी का छेद दिखाई दिया। उसने अपनी छाती से एक छोटी चाबी निकाली, वही जो उसने नवीन के शरीर से ली थी। उसने चाबी को छेद में डालकर धीरे से घुमाया। आवाज सुनते ही धनुष मुस्कराया। बक्सा खुला, अंदर 2 चीजें थीं, एक गुप्त पत्र और दूसरी एक चौकोर जेड की पटिया जो हल्की बहुरंगी रोशनी बिखेर रही थी। यह साधारण जेड नहीं थी बल्कि बहुत ही असाधारण। एक गुप्त पत्र, जयदेव को संबोधित। धनुष ने लिफाफा फाड़ा और पत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसमें 2 विषयों पर जानकारी थी, एक ट्रांस हेवन डायग्राम और दूसरा अविनाश का विद्रोह। इसमें विस्तार से अविनाश की गतिविधियों और 3 पूर्वी महाद्वीप की विशेष सेनाओं के बारे में लिखा था। बहुत खतरनाक था यह। रविंदर की जांच बहुत गहरी थी, कई बातें तो मुझे भी नहीं पता थीं। अगर जयदेव को यह सब पता चल जाता तो बहुत बुरा होता। शुक्र है मैंने यह पत्र रोक लिया, धनुष ने राहत की सांस ली। उसे यह नहीं पता था कि रविंदर हमेशा अपने निष्कर्षों को इकट्ठा करके ही रिपोर्ट करता था। यह पत्र उसकी सबसे बड़ी खोजों में से एक था, लेकिन अब न तो रविंदर जिंदा था, न ही यह पत्र जयदेव तक पहुंचेगा। उसके जैसे जासूस को ढूंढना लगभग असंभव था। धनुष ने अपने दाएं हाथ से हवा का एक झोंका पैदा किया और उस पत्र को चूर्ण बना दिया। अब यह पत्र नष्ट हो चुका है, वह दुष्ट जयदेव अब कुछ नहीं जान पाएगा। धनुष के मन में ठंडी घृणा उभर आई। उसे पता था कि उसकी मां की हत्या जयदेव ने करवाई थी, वह कैसे उसे माफ कर सकता था। 2 तेज आवाजों ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा, वायु यह क्या कर रहा है? तेरी चोंच बहुत तेज है, क्या तू इस ट्रांस हेवन डायग्राम को तोड़ना चाहता है? धनुष ने झट से उसे हटाया। अच्छा हुआ यह टूटा नहीं, धनुष ने राहत की सांस ली। उसने उस चौकोर जेड ब्लॉक को देखा, यह अब भी सुरक्षित था। उसने गुस्से से वायु की ओर देखा पर वह पंख फड़फड़ाकर गर्व से सिर हिलाने लगा। तो तीनों ट्रांस हेवन जेड ब्लॉक्स अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में थे, वे साधारण जेड नहीं थे, इसीलिए आसानी से टूट नहीं सकते थे। अब तेरे साथ वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं इस ट्रांस हेवन डायग्राम का अध्ययन करता हूं। धनुष ने उसे लेकर बाहर आंगन में कदम रखा। रात में वह तारों की रोशनी में रहना बहुत पसंद करता था। थोड़ी देर पहले ही अंधेरा हुआ था, पर उसे देखने में कोई दिक्कत नहीं थी। यही है ट्रांस हेवन डायग्राम? निम्न तो बस कुछ चित्र हैं। धनुष ने बहुत ध्यान से देखा, फिर अपनी पवित्र चेतना से भी परखा, पर चित्रों के अलावा कुछ न मिला। उस जेड ब्लॉक पर फर्स्ट ट्रांस हेवन डायग्राम शब्द खुदे थे, जो कि आम भाषा में लिखे थे। उसके नीचे 36 छोटे चित्र थे। हर चित्र में एक व्यक्ति किसी विचित्र मुद्रा में था। वे सभी क्रियाएं बेहद अजीब लग रही थीं। यह आखिर है क्या? सिर्फ 36 अजीब हरकतें? कहीं यह इन्हीं हरकतों को सीखने का रहस्य तो नहीं? धनुष ने खुद से कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई इस रहस्य को बहुत पहले खोज लेता। आधी रात बीत गई, चांद पेड़ों के ऊपर आ गया, पर धनुष को कोई समाधान नहीं मिला। छोड़ो, पहले इन हरकतों को सीख कर देखते हैं। धनुष खड़ा हो गया। अपनी अद्भुत पवित्र चेतना के कारण उसे हर क्रिया याद थी। उसने एक एक करके एक शुद्धि चेतो के एक एक करके उन्हें करना शुरू किया। उसका शरीर लचीला और मजबूत था, फिर भी ये हरकतें बहुत अजीब लग रही थीं। फिर भी उसने धैर्य रखा और सभी मुद्राएं सीख ली। अचानक, ये क्या? दुनिया की पवित्र चेतना का यह क्या हाल है? धनुष चौंक गया। जैसे ही उसने वे मुद्राएं की, चारों दिशाओं से पवित्र चेतना उसकी देह में समा गई, उसके रक्तमांस में प्रवाहित होने लगी। यह ऊर्जा इतनी तेजी से समा रही थी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा की तुलना में कई गुना अधिक गति से जा रही थी। क्या यही है ट्रांस हेवन डायग्राम का रहस्य? धनुष को जवाब नहीं पता था, पर एक बात वह जान गया था, उसे ये गतियां बेहद पसंद आईं। क्या धनुष अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या वह अकेले ही अगले स्तर का प्रशिक्षण शुरू कर सकेगा, या फिर उसे किसी और मदद की जरूरत पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहें अगला एपिसोड सिर्फ नॉवल सीरीज पर।